ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले यहां आए हुए सभी वैष्णव का चरणों में मैं दंडवत नमस्कार करता हूं और भागवतम के लिए आपको स्वागत करता हूं। तो कल श्रीमान भीमा प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताए थे कि किस तरह इस संसार में शोक करना व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी बात पे उसको शोक नहीं करना चाहिए। इस बात के ऊपर कल उन्होंने बहुत ही अच्छा भागवतम में कहे थे। आज का श्लोक है श्लोक नंबर 50। श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 7 चैप्टर 2 श्लोका नंबर 50। लुब्ध को विपिने कश्चित्, दोहराइए, लुब्ध को विपिने कश्चित्। तो 50-55 वाला उसको परपट नहीं है,
55 बोल दीजिए ना, लोग डायरेक्ट बोलेंगे, बाद में पढ़ेंगे।
ओके,
आप 55 बोल दीजिए, बाद में पढ़ लीजिए।
ओके ओके। तो आज का श्लोक 55 है, 55 है ना। ओके, और 50-51-55 तक इसका परपट नहीं है, तो आज पहले ये श्लोक ले लेंगे। श्लोक नंबर 55। कथम तू अजात पक्षान मात्रहीनान विभर्म्यहम् मंदभाग्यः प्रतीक्षन्ते नीढे मे मातरं प्रजा। कथं त्वजात पक्षस्तान् कथं त्वजात पक्षांस्तम् मात्रहीनान् विभर्म्यहम् मात्रहीनान् विभर्म्यहम् मन्दभाग्या प्रतीक्षन्ते मन्दभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः नीडे मे मातरं प्रजाः। कथं तु अजातपक्षस्तान् मात्रहीनान् विभर्म्यहम् मन्दभाग्या प्रतीक्षन्ते नीढे मे मातरं प्रजाः। दोहराइए। कथम तु अजात पक्षांस्तान मात्रहीनान विवर्म्यहम् मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते नीढे मे मातरम् प्रजा। कथम तु अजात पक्षांस्तान मात्रहीनान विवर्म्यहम् मंदभाग्यः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः। कथं तु अजातपक्षांस्तान् मात्रहीनान् विभर्म्यहम् मंदभाग्यः प्रतीक्षन्ते नीढे मे मातरं प्रजा। माताजी कथं तु अजातपक्षांस्तान् मात्रहीनं विभर्म्यहम् मंदभाग्यः प्रतीक्षन्ते नीढे मे मातरं प्रजाः। हरे कृष्ण। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो महा उदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की। सो मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स कथम हाउ टू बट अजात पक्षान हु हैव नॉट ग्रोन विंग्स टू फ्लाई तान देम मात्रहीनान बिरेफ्ट ऑफ देयर मदर बिभर मी शैल मेंटेन अहम आई मंद भाग्य वेरी अनफॉर्चुनेट प्रतीक्षन्ते दे अवेट नीड हे इन द नेस्ट मे माय मातरम देयर मदर प्रजा बेबी बर्ड्स द अनफॉर्चुनेट बेबी बर्ड्स bereft of their mother are waiting in the nest for her to feed them. They are still very small and have not yet grown their wings. How shall I be able to maintain them? This is the translation. So purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The bird is lamenting for the mother of his children because the mother naturally maintains and cares for the children. Yamaraja, however, in the guise of a small boy, has already explained that although his mother left him uncared for and wandering in the forest, the tigers and other ferocious animals had not eaten him. The real fact is that if the Supreme Personality of Godhead protects one, even though one be motherless and fatherless, one can be maintained by the good will of the Lord. Otherwise, if the Supreme Lord does not give one protection, one must suffer in spite of the presence of his father and mother. Another example is that sometimes a patient dies in spite of a good physician and good medicine. Thus, without the protection of the Lord, one cannot live with or without parents. Another point in this verse is that fathers and mothers have protective feelings for their children, even in bird and beast society, not to speak of human society. Kali Yuga, however, is so degraded that a father and mother even kill their children in the womb on the plea of their scientific knowledge that within the womb the child has no life. Prestigious medical practitioners give this opinion, and therefore the father and mother of this day kill their children within the womb. How degraded human society has become. Their scientific knowledge is so advanced that they think that within the egg and the embryo there is no life. Now these so-called scientists are receiving Nobel Prizes for advancing in the theory of chemical evolution. But if chemical combinations are the source of life, why don't the scientists manufacture something like an egg through chemistry and put it in an incubator so that a chicken will come out? What is their answer? With their scientific knowledge, they are unable to create even an egg. Such scientists are described in Bhagavad Gita as Maya Aparata Jnana. Fools whose real knowledge has been taken away, they are not men of knowledge, but they pose as scientists and philosophers, although their so-called theoretical knowledge cannot produce practical results. Hare Krishna. So this is, I think, most important verse in the Bhagavatam. Of course, every verse has something to learn. But particularly, this shloka is very important because let's see the background of this situation. Now here, Yamaraja, disguised as a small boy, is telling to the wives of Raja Suyajna. The king Suyajna, who has died, and all the queens of Suyajna, Raja, they are weeping, they are crying, and they are lamenting for the death of their husband. So that is the situation. And Yamaraja, in the guise of a small boy, he is telling them, although all the queens, oh my great queens, in age you are much older than me, you have seen many incidents in the life, I am a small boy, but you are lamenting for nothing. So he is telling the queens of Raja Suyajna that you are lamenting for your husband, but although the dead body of their husband is lying there. And this situation, why it is so important for all of us? Because in this material world, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति एक तो सुख से एक तो दुख से या शोक से पीड़ित है. एवरी वन इज यू नो ट्रबल्ड बाय आइदर लेमेंटेशन और दुख. तो शोक और दुख में अंतर क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति इफ ए पर्सन इज थिंकिंग फॉर द पास्ट इंसिडेंट्स, बीते हुए प्रसंग को लेकर अगर व्यक्ति दुखित है उसको बोलते हैं शोक, और आगे होने वाला प्रसंग को लेकर वो चिंता करता है उसको बोलते हैं दुख. तो हर एक व्यक्ति इस संसार में शोक और दुख से पीड़ित है. तो इसी तरह इस प्रसंग में राजा सुयज्ञ के रानिया शोक से पीड़ित है और रो रहे हैं. तो यमराज जी एक छोटे बालक के रूप में वहां आए हैं और उनको बता रहे हैं कि आप जो शोक कर रहे हैं, तो ये जो आत्मा, ये अज्ञानी का स्वरूप है. अज्ञानी जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज में नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो शोक से पीड़ित हो जाता है. तो और इस पर्पट में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसा इस संसार में जो भी कुछ होता है ये भगवान की कृपा से होता है. देखिए एक घटना बहुत सुंदर, और इसमें इस बात को कौन बता रहा है? हिरण्यकश्यपु का प्रवचन चल रहा है. देखिए ये जो प्रसंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टेलीस्कोपी है. इसमें एक कथा में दूसरा कथा में तीसरा में चौथा, ऐसा अनेक स्टेजेस है. तो हिरण्यकश्यपु माता दिति को और हिरण्याक्ष के पत्नी ऋषिबानो और उसके हिरण्याक्ष के पुत्र को ये प्रवचन दे रहे हैं। हिरण्याक्ष का वध हुआ था भगवान वराह रूप में और सभी लोग शोक में शोक पीड़ित है, सब लोग रो रहे। तो हिरण्यकश्यपु उनको प्रवचन दे रहे। हालांकि महाराज बताते हैं कि कभी कभी भक्तों को लगता है हिरण्यकश्यपु का वचन प्रवचन क्या सुनना है, लेकिन यहां जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें तीन महाजनों हैं, तीन महाजनों एक ही बात को कह रहे हैं। कौन तीन महाजनों हैं? एक तो सुखदेव गोस्वामी है, 12 महाजनों में सुखदेव गोस्वामी एक है, और स्वयं नारद मुनि है जो युधिष्ठिर को कथा बता रहे हैं। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को नारद मुनि इसी कथा को बता रहे हैं, इसी प्रसंग में। और एक तो नारद मुनि है और सुखदेव गोस्वामी है और यमराज है, यमराज स्वयं 12 महाजनों में है। तो तीनों महाजनों ने एक ही कथा को इस प्रसंग में कह रहे हैं। और शोक और दुख प्रत्येक व्यक्ति को पीड़ित करता है इस संसार में। अगर कुछ दुखदायक प्रसंग अपने जीवन में होता है, हम सब शोक करते हैं, मैं भी उस पर पीड़ित हूं। हालांकि मैं इधर बोल रहा हूं, लेकिन ये मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा लेसन है। संसार में सब कुछ भगवान के हाथ में है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हम व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं कि एक पेड़ का पत्ता भी हिलने के लिए भगवान का अनुग्रह होना पड़ता है, या ऐसा बोलते हैं कि घास की तिनका भी भगवान के वो हिलता नहीं अगर भगवान का उसका कृपा नहीं होता। तो मान लीजिए कभी कभी एक व्यक्ति का बटवा, पैसे के बटवा अगर रोड में कहीं तो गिर गया है, और उस व्यक्ति को बाद में पता चलता है अरे मेरा पैसा उधर गिर गया था, तो कुछ समय के बाद वो व्यक्ति वापस जाता है और उसी जगह पे उसको बंटवारा मिल जाता है। अगर भगवान का कृपा हो तो, हालांकि आप सभी को ऐसा एक्सपीरियंस होगा, कई खोए हुए जो चीज है आश्चर्य होता है कि कैसा मिल गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में या बैंक में एकदम सिक्योर्ड लॉकर में पैसा रखा गया है, बहुत कमाई करने के बाद कष्ट के बाद बैंक में पैसा रखा है, जो उधर गार्ड्स खड़े हैं, तो बैंक का एम्प्लॉयज है, इतना टाइट सिक्योरिटी है, फिर भी डकैत आके चुरा के ले जाते हैं पैसे। तो कितना भी अगर सिक्योरिटी हो, भगवान का कृपा नहीं हो, तो बैंक में सिक्योर्ड पैसा भी चुराया जा सकता है। तो इसमें शोक करने की क्या बात है? अगर सब कुछ भगवान के हाथ में है तो हम बिना कारण शोक करके क्या फायदा है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी जब व्यक्ति का जीवन में ऐसा प्रसंग होता है बहुत ही दुख, तो हम जो व्यक्ति दुखी होता है तो ये अज्ञान का एक स्वरूप है। तो कल भीमा प्रभु जी ने बता रहे थे कि जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको ज्ञान देना कठिन है, उसको समझाना कठिन है। तो यहां एक यमराज जी ने राजा सुयज्ञ का पत्नियों को एक छोटा सा कथा बता रहे हैं। तो इस श्लोका में, इसके पहले 5 श्लोका में वो जो कथा है जिसका परपट नहीं है, प्रभुपाद जी ने जो श्लोका नंबर 50, लुब्ध को विपिने कश्चित पक्षिनाम निर्मतो अंतकः वितत्य जालम विददे तत्र तत्र प्रलोभयन। देर वॉज वंस ए हंटर हु ल्यूड बर्ड्स विथ फूड एंड कैप्चर्ड देम आफ्टर स्प्रेडिंग ए नेट। ही ल्यूड एज इफ अपॉइंटेड बाय डेथ परसोनिफाइड एज द किलर ऑफ द बर्ड्स। एक बार एक शिकारी था और इस शिकारी जंगल में पक्षियों को पकड़ता था, अपने जाल को बिछाकर पक्षियों को उसको भ्रमित कर देता था, खाने के लिए कुछ वस्तु रखता था और भ्रमित करके उसको जाल में पकड़ के ले जाता था। और इस व्यक्ति ऐसा बिहेव करता था कि यमराज ने इसको ये काम दिया है। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की। इस व्यक्ति, इस शिकारी समझता था कि यमराज का एक अधिकारी है, सब पक्षियों को निर्गण हत्या करता था, तो जाल बिछाकर उसको ले जाता था। और आगे श्लोक में कहते हैं, कुलिंग मिथुनम तत्र विचस्त मद्रशा तयो कुलिंगी रहसा लुब्धकेन प्रलोभिता। वाइल वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट द हंटर saw a pair of कुलिंग बर्ड्स। ऑफ द टू द फीमेल was captivated by the hunter's lure। तो एक बार एक पक्षी, उसका नाम है कुलिंग पक्षी, एक कुलिंग जाति का पक्षी ये कुलिंगी को इस शिकारी ने अपने जाल में फंसा दिया था, उसको खाने के लिए रखा था और वो भ्रमित होकर वो जाल में फंस गई और बेचारी उस जाल में फंस कर रो रही थी, बहुत दुखी हुई थी। और उसको देखकर कुलिंग पक्षी, उसका पति जो है वो दूर से बैठा था और वो भी रो रहा है, वो क्या सोच रहा है, हाय हाय मेरा पत्नी, इस विधाता ने कैसा मुझे स्थिति लाकर दिया है, इसको मारकर विधाता को क्या मिलेगा, ऐसा वो शोक कर रहे हैं। आगे का श्लोक में बताते हैं, सा सज्जत शितिस्तंत्र महिष कालयंत्रिता कुलिंगस्तम तथा पन्नम निरीक्ष बुह निरीक्ष ब्रश दुखितः स्नेहात कल्पः कृपणः कृपणाम पर्यदेवयत्। ओ क्वींस ऑफ सुयज्ञ, द मेल कुलिंग बर्ड सीइंग हिज वाइफ पुट इन टू द ग्रेटेस्ट डेंजर इन द ग्रिप ऑफ प्रोवाइडेंस बिकेम वेरी अनहैप्पी Because of affection, the poor bird, being unable to release her, began to lament for his wife. तो इस पक्षी जो पति है, कुलिंग पक्षी है, वो अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं। हाय हाय मेरा क्या होगा, मेरा बच्चा का क्या होगा, जिसका छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको पंख भी नहीं उठे अभी तक, और माता का राह देखते देखते वो बहुत दुखी हो जाएंगे, और मेरा कौन ख्याल करेगा, ऐसा दुखी होकर इस कुलिंग पक्षी रो रहे हैं। तो आगे 53 वर्ष में बताते हैं, अहो अकरुणो देवः स्त्रिया करुणया विभु, अहो अकरुणो देवः स्त्रिया करुण्या विभु कृपणा मामनुशोचन्त्या दीनया किं करिष्यति। अलास हाउ मर्सीलेस इज प्रोवाइडेंस, माय वाइफ unable to be helped by anyone, is in such an awkward position and lamenting for me. What will providence gain by taking away this poor bird? What will be the profit? तो वो पक्षी बोल रहे कि भगवान को क्या मिलेगा, विधाता को, मेरे पत्नी को मारकर उसे क्या मिलेगा, इस poor पक्षी को मार के भगवान को क्या मिलेगा। और मेरे जो आगे का श्लोक में, आज का ये जो श्लोक, कतम तु अजात पक्षांस्तान मात्रहीनान बिभर्म्यहम मंदभाग्यः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरम प्रजाः। द अनफॉर्चुनेट बेबी बर्ड्स bereft ऑफ देयर मदर आर वेटिंग इन द नेस्ट फॉर हर टू फीड देम, दे आर ऑल स्टिल वेरी स्मॉल एंड हैव नॉट येट ग्रोन देयर विंग्स, हाउ शैल आई बी एबल टू मेंटेन देम। तो इस पक्षी बोल रहे कि मेरे जो बच्चे हैं, उसको पंख भी उठा नहीं है, छोटे छोटे पक्षी माता के राह देखते देखते बहुत रोएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे, उनका कौन देखभाल करेगा और मेरा कौन देखभाल करेगा, इस पत्नी के आसक्ति के कारण वो दुखी हुआ है। तो इस प्रसंग को, हालांकि ये जो कथा है ये पक्षी का कथा नहीं है, यमराज जो कथा बता रहे हैं ये हम सब का कथा है। पक्षी को क्यों यहां एक उदाहरण के रूप में क्यों लिया गया है? पक्षी मतलब इसको ज्ञान नहीं होता है। जो अज्ञानी व्यक्ति, जो सेल्फ रियलाइज नहीं है, ज्ञान के अभाव से शोक और दुख के कारण जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको अज्ञानी कहा जाता है या भ्रमित व्यक्ति कहा जाता है। खास करके जो आत्मधारी, जो पक्षी का शरीर में या प्राणी का शरीर में होता है वो भ्रमित होता है। हालांकि हम भी सब भ्रमित है, लेकिन हमसे ज्यादा ये पक्षी भ्रमित होते हैं। उसको अज्ञानी के स्वरूप माना गया, इसलिए इस पक्षी का उदाहरण दिया है यमराज ने। और कुलिंग जाति का एक पक्षी होता है, शायद आप सभी ने देखे होंगे, गांव में या जंगल के किनारे में ये पक्षी होता है। इसका बड़ा एक चूच होता है और एक कंद को उखाड़ कर खाता है। इस पक्षी कुलिंग पक्षी कहते हैं इसको। तो इस कुलिंग पक्षी इस हम सभी को प्रतीत करता है। हम भी अगर जो हमारा सके संबंधी जो गुजर जाते हैं तो बहुत शोक करते हैं, ऐसा कि शोक करने से वापस आएगा सोचकर शोक करते हैं। तो अगर शोक करने से वापस कोई आता था तो शोक करने से फायदा है, लेकिन शोक करके अगर कोई आता नहीं तो शोक करके क्या फायदा है? तो यमराज ने इन सुयज्ञ का पत्नियों को ये बात बता रहे हैं कि आप जो शोक कर रहे हैं, व्यथा शोक कर रहे हैं, और इस पक्षी के तरह कि ऐसा शोक करते करते आगे का श्लोक में आता है, वो जो शिकारी उस कुलिंग पक्षी को देखता है और उसको बान मार के उसको भी खलास कर देता है, उसको भी खत्म कर देता है। तो जो काल जो है, इस मृगारी यहां काल का स्वरूप है। काल प्रत्येक जीव को हरण कर लेती है। तो जो भी इस संसार में चलता है तो ये सभी जो घटना है एक स्वप्न के जैसे बीतते जाते हैं, और इसी स्वप्न को मन में लाकर रोने से क्या फायदा है? तो बहुत महत्वपूर्ण है ये जो श्लोका है, प्रत्येक जीवन। तो महाराज बोलते हैं किसी भी चीज पर व्यक्ति को, खास करके भक्त को, शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने से उसे कोई लाभ नहीं होता है। तो भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में ये जो प्रसंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में 10 आइटम्स है, 10 मेन सब्जेक्ट्स हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतः, मन्वंत्र कथा स्थानम पोषणम उतः, मन्वंत्र ऐशानुकथा निरोधा मुक्ति आश्रय, ऐसा 10 सब्जेक्ट्स हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने 10 सब्जेक्ट्स को बताया है। और ये जो 7th कैंटो है ये उतः, इसके बारे में दृष्टांत करता है, उतः के बारे में बताता है। तो 7th कैंटो उतः के बारे में, उतः मतलब क्या है? उत्तम मतलब, उतः मतलब संस्कृत का शब्द है कर्म करने का प्रवृत्ति। उतः का मतलब है इसको कर्म वासना कहते हैं। कर्म वासना मतलब कर्म करने का प्रवृत्ति। सो प्रत्येक जीवा जो है इस संसार में, जब हम सब आते हैं तो हम सभी में कर्म करने का एक प्रवृत्ति है, इसलिए हम आते हैं इधर। इच्छा द्वेष द्वंद्व समुत्थेन भारता, भगवत गीता में भगवान कहते हैं इच्छा और द्वेष के कारण हम सब इस संसार में आते हैं, और इसलिए कर्म करने का एक प्रवृत्ति होता है। तो दो प्रकार के कर्म है, कर्म वासना जो है दो प्रकार के हैं। एक कर्म वासना है उसको बोलते हैं शुभ कर्म वासना, और दूसरा जो है उसको अशुभ कर्म वासना कहा जाता है। शुभ कर्म वासना और अशुभ कर्म वासना। तो शुभ कर्म वासना क्या है? जब व्यक्ति इस संसार का कर्म का बंधन से बंधन को छोड़कर जब भगवान का प्रति कर्म करने लगता है उसको शुभ कर्म वासना कहते हैं। और जब व्यक्ति भगवान को छोड़कर इस संसार में काम करने लगता है, बहुत प्रयास करने लगता है, पैसे इकट्ठा करना, शादी करना, बहुत बड़े बड़े कार्य करना, ये जो है अशुभ कर्म वासना कहे गए। तो ये दोनों व्यक्ति को कैसा लाभ मिलता है, शुभ कर्म का और अशुभ कर्म का। जब किसी भागवत का, महान व्यक्ति का अगर कृपा मिलता है तब उसका मन में शुभ कर्म का चेतना मिलता है, शुभ कर्म वासना का प्रेरणा उसको किसी भागवत का कृपा से मिलता है। और अशुभ कर्म वासना किसी महान भागवत का कर से, शाप से मिलता है। तो ये दोनों प्रसंग इस अध्याय में है। देखिए हिरण्यकश्यप इतना पृथ्वी का महान राजा, ये भगवान का भक्ति के विपरीत है, भगवान को द्वेष कर रहे हैं। क्यों द्वेष कर रहे हिरण्यकश्यप? हालांकि हिरण्यकश्यप का पिछले जन्म में वैकुंठ में जय और विजय वैकुंठ में स्थित थे, चतुष्कुमार का शाप के वजह से उनको असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। वही हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, रावण और कुंभकर्ण ऐसा जन्म लेकर आए। और इस महान व्यक्ति का, इस महान भागवत का शापों से वो भगवान से पूरा विपरीत बुद्धि बन गया है, भगवान को द्वेष कर रहे। हिरण्याक्ष का वध के पश्चात हिरण्यकश्यप भगवान को द्वेष दे रहे और ऐसा कह रहे कि मैं इस विष्णु को इसी मेरा त्रिशूल से खत्म कर दूंगा और उसका रक्त पी लूंगा। ये सुनकर बहुत हमको दुख होता है, हम सब भक्त लोगों को दुख होता है। लेकिन इस अध्याय में सीखना जैसा यह है कैसे भागवत कृपा से, महान व्यक्ति का कृपा से व्यक्ति का हृदय में शुभ कामना का वासना जागृत होता है और भागवत का कोप से, शाप से अशुभ कर्म वासना का प्रेरणा मिलता है। और इसी का पुत्र, हिरण्यकश्यप के पुत्र श्री प्रहलाद महाराज छोटे बालक हैं, तो जन्मता उनको नारद मुनि का कृपा मिला था। जब कयादु का गर्भ में थे प्रहलाद महाराज, नारद मुनि पूरे भागवत और सब सारांश कयादु को उन्होंने बताए थे और उसी के कारण, उस कृपा के कारण प्रहलाद महाराज एक महान भक्त इस असुर का पेट में जन्म लिए थे। ये दोनों कितना कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक राजा, पृथ्वी का राजा भगवान विष्णु को पूरा द्वेष करता है और भगवान, इतना ही नहीं, भगवान विष्णु को मारने के लिए हजारों हजारों साल तपस्या करता है। कितना प्रयत्न किया, कितना प्रयास किया है हिरण्यकश्यप भगवान को मारने के लिए। और प्रहलाद महाराज उसी का पुत्र, भगवान का इतना प्रेमी है, इतना प्रेमी है, स्वयं भगवान नरसिंह भगवान का रूप में प्रकट होकर प्रहलाद महाराज के लिए आते हैं। ये दोनों इतना विपर्यास है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस प्रसंग में उतय का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कैसे कि एक भागवत का कृपा से प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ और उनको शुभ कर्म का वासना का हृदय में जागृत हुआ। और जैसे कुमार, चतुष्कुमार का कोप से, शाप से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ और उनको अशुभ कर्म करने का वासना जागृत हुआ, तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रसंग में हम देखते हैं कि जैसा नारद मुनि महान संत और भगवान के बहुत बड़े व्यक्ति, महाजनों में एक, 12 महाजनों में एक गिना जाता है। नारद का मतलब है नारद, जो भी नारद मुनि कहते हैं उसको रद्द नहीं किया जाता है, इसलिए उनका नाम है नारद। नारद तो नारद मुनि इस कथा को राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर को बता रहे हैं, और इसी कथा को हिरण्यकश्यपु माता दिति को और उनके हिरण्याक्ष के पुत्र को बता रहे हैं, उनको समाधान दे रहे हैं। देखिए भागवतम इतना सुंदर और महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में, तो आचार्यों ने इसका पुष्टि करते हैं कि जैसा कि एक छोटा बच्चा, घायल हुआ बच्चा है, उसको बच्चा जब गिर जाता है, हाथ को घायल होता है, तब रोते रोते बच्चा मां के पास आता है, तो तुरंत मां क्या करती है, उस घायल के त्वचा के ऊपर मां ने फुंकारा लगती है, फूंकती है, फूंक के उसको स्वांतन देती है, बच्चा को हर्षित करती है। ठीक उसी तरह हम सभी बच्चे जैसे हैं, किसी ना किसी कारण, दुख के कारण इस संसार में त्रस्त है, रोते रहते हैं, और जब हम भागवत का आश्रय लेते हैं, इस कथा को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कोई मां अपने घायल के ऊपर फुंकारा मार रही है, तो इसलिए महत्व है। तो शोक जो है इस कथा सुनने के बाद, किसी का हृदय में अगर शोक है, उस शोक को सांत्वना मिलता है। तो कोई भी चीज के लिए व्यक्ति को शोक करना नहीं चाहिए, हालांकि उसी टाइम को भगवान का भक्ति में जुड़ाना चाहिए, भगवान का भक्ति में लगाना चाहिए। तो और एक कथा रामायण में आती है, शायद आप सब सुने हैं, कि जैसा कि शबरी माता, शबरी एक महान भक्त, शबरी का कथा ऐसा है कि माता शबरी अपने पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा राजा का बेटी थी, और जन्मता उसको भागवत का सेवा करने का बहुत इच्छा रहता था, उसको लगता था मैं इस राजा का बेटी हूं, और मुझे ऐसा कभी संधि नहीं मिलता है कि जैसा कि आम व्यक्ति जैसा मैं रोड के यहां जाओ, क्या नदी के पास जाओ और कोई भागवतम का दर्शन करो, भागवत का दर्शन करो, महान संतों का दर्शन करो, ऐसा ये कभी पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा वो सोचती रहती थी। एक बार वो जानती है कि ये बहुत बड़ा एक फंक्शन हो रहा है, वहां सारे संत मुनि लोग वहां जुड़ने वाले थे, और उसको बहुत इच्छा होती है कि वो मन में सोचती है अगर मुझे एक संधि मिलता है वहां जाने के लिए, मैं कितना भागिनी रहूंगी और इस सभी भागवतों का दर्शन होगा, ऐसा सोचती रहती थी। और एक बार पिता को वो कहती है, तो राजा को कहती है, राजा पूछता है बेटी क्या बात है, क्या चिंता कर रही, तो बोलते पापा मुझे कल सुबह इस गंगा के नदी के तट पर स्नान करने के लिए जाने का, कृपया मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो राजा बोलते बस इतनी सी बात है, तो तुरंत वो मंत्री को बुलाता है, मंत्री को बोलता है देखो राजकुमारी कल इस गंगा नदी के तट पर स्नान करने के लिए जाएंगे, सब इंतजाम करो। तो तुरंत मंत्री ने दो तीन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और उस राजकन्या को कल सुबह प्रातः काल में गंगा नदी जाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया। उसको मन में इतना खुश हुई कि कल मैं भागवतम का, महाभागवतम का दर्शन करूंगी, ऐसा सोचकर पलंकविन पालकी में बिठाकर उसको सुबह लेके जाते हैं, और जैसे वो पालकी से नीचे उतर जाती है, बहुत हर्षित होकर गंगा को, नदी को पहले दंडवत नमस्कार करती है और देखती है सब संत महाजनों कहां है, वहां एक सिक्योरिटी था, उस सिक्योरिटी को बुला के पूछती है कि यहां संत समागम होने वाला था, कहां है वो सब संत लोग। वो सिक्योरिटी तो अज्ञानी था, उसको कोई बताया नहीं था, और कौन कौन संत, वो पूछता है कौन संत, तो यहां तो बहुत बड़े लोगों का संगम होने वाला था इसलिए मैं आई हूं। तो बोलते वो लोग, अरे वो सब भिखारी थे, वो सब आप आने वाले इसलिए हम उनको भगा दिया यहां से, सिक्योरिटी बोलता है। तो इस राजकुमारी को इतना दुख होता है जैसा कि एक पत्थर को लेकर हृदय के ऊपर आघात किया गया है, बहुत ही दुख होता है, वहां ही वो कोलैप्स होती है, नीचे बैठ जाती है,
हाय हाय कितना दुर्भाग्य हूं मैं, इस राजा का पेट से मेरा जन्म हुआ और मेरे हाथों से इतना बड़ा अपराध हो गया, इस महान संतों का मैंने इतना अपराध कर लिया। तुरंत वो सोचती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान अगर मुझे अगले जन्म देना है राजा का पोट से मुझे पेट से मुझे जन्म मत दे दो, एक गरीब का पेट से मुझे जन्म दे दो, ऐसा प्रार्थना करती है। उसी प्रार्थना के वजह से गंगा नदी के तट के ऊपर वो अगले जन्म में एक शबर का पुत्री बनकर जन्म लेती है। एक शबर मतलब शिकारी, जिस शिकारी, देखिए शबरी माता केवल उसने मन में सोचा कि मुझे संतों का दर्शन होना चाहिए, उसी सोच के वजह से उसको उसके हृदय में शुभ कर्म का वासना का प्रभाव मिला। केवल सोचने से उसको दर्शन भी नहीं मिला, केवल उसने सोची थी कि मुझे संतों का दर्शन होना चाहिए, तो उसी सोच के वजह से प्रार्थना के वजह से अगले जन्म में जब वो जन्म लेकर आती है उसके हृदय में हमेशा रहता था, वो भगवान के कृपा से उसको पिछले जन्म का पूरा याद होता था कि पिछले जन्म में राजा के बेटी थी, ऐसा घटना हुआ था और मुझे बहुत दुख हुआ था। तो इस जन्म में शिकारी का बेटी हुई है और जब वो बड़ी होती है 16 साल की तब वो शिकारी उसका ब्याह का इंतजाम करता है, शादी का इंतजाम करता है। तो शिकारी एक बकरा को पकड़ के यानी एक व्यक्ति को पकड़ के उसके साथ शादी करने वाला रहता है और वो तो शिकारी है, वो बहुत हर्षित होता है, मेरा बेटी का ब्याह करूंगा और बहुत धूमधाम से करूंगा, इसलिए बहुत सारे प्राणियों को पकड़कर उसको आधा मारकर अपने घर के सामने टांग के रखा था, वो सब प्राणियों को बोले सबको फीस्ट दिलवा दूंगा ऐसा सोचकर। तो शबरी माता एक दिन बाहर आके देखती है इतना सारे प्राणियों को पकड़कर टंगा गया है, उसको आधा मारा गया है, को इतना दुख होता है। बेचारी वो तो मन में बहुत कोमल थी, बोलते पापा ये क्या कर रहे हो, ये सब प्राणियों को क्यों मारे हो? बोलते बेटा तुम्हारा खुशी के लिए, तुम्हारा ब्याह होने वाला है और सभी को फीस देने का, इसलिए ये सब मारा है। उसको इतना दुख होता है फिर से, और वो दुख से वो सोचती है मेरा शादी करने से भला ये अच्छा है कि यहां से भाग जाओ। तो उसी रात में शबरी माता उस घर से भाग जाती है, वो शबर को न बताए हुए भागते भागते ये आती है इधर, एक कर्नाटक में एक प्लेस है राम दुर्ग बोल के प्लेस है, अगर शायद आपने देखे होंगे, बेलगाम से 55 किलोमीटर है राम दुर्ग, भगवान राम जी ने उस स्थान पर चरण रखे थे जब नासिक से लंका जा रहे थे तो राम दुर्ग होकर गए थे ऐसा बताते हैं। तो उसी स्थान में एक मातंग ऋषि का आश्रम था, मातंग ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे और अपना कुटिया बनाकर वहां रहते थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे और सुबह 3 बजे उठते थे और पूरा भगवान का जप और नियमों का पालन करते थे। माता शबरी दूर से देखती है, अरे यहां तो एक किसी संतों का कुटिया है तो मेरे लिए यही स्थान बहुत अच्छा रहेगा ऐसा सोचकर, लेकिन मैं तो स्त्री हूं 16 साल की हूं तो यहां तो मुझे कोई अलाउ नहीं करेगा, तो ऐसा सोचकर वो क्या करती, थोड़ा दूर से जंगल में अपना कुटिया बनाती है और पूरा अपना अंग के ऊपर काला कर देती है ताकि कोई देख ना सके, उसका मुंह हमेशा बंद रखती है और वो सोचती है मुझे इस जन्म मिला है इस संतों का किसी ना किसी तरह से मुझे सेवा करना चाहिए। तो रोज सुबह इस सारे संत उठने से पहले वो उठ जाती थी और तुरंत तैयार होकर उस आश्रम में चोरी से अंदर घुस जाती थी और पूरा जो एरिया है उसको सारती थी, उसको साफ सफाई करती थी, पानी भरकर रखती थी, पुष्प और फूलों को रखती थी और 3 बजे से पहले वहां से निकल जाती थी और उसको मन में इतना सुख होता था मैं कुछ भगवान का भक्तों का सेवा कर रही हूं। ऐसा बहुत सुख होता था। और ऐसा ही कई दिन तक उसने सेवा की। एक दिन मातंग ऋषि जप करते बैठे थे, उनको लगा आज जप में मुझे मन नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो सभी शिष्यों को बोलते हैं कि क्या गड़बड़ है, आज मेरे जप में मन नहीं लग रहा है। तो सब शिष्य उनके मुंह देखते बैठते हैं, तो तब बोलते हैं कि मैंने सुबह देखा अपने आंगन में बहुत अच्छा कोई तो सेवा करता है, आप में से कौन सेवा किया है, सबको पूछते हैं। सब बोलते मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो इनको आश्चर्य होता है, इसका मतलब कोई ना कोई तो आता है आश्रम में हम उठने से पहले, और ये इतना सुंदर सेवा करके जाता है। तो एक शिष्य को बुलाते हैं, पता करो कौन ये सेवा करता है। तो एक शिष्य ने, मातंग ऋषि का शिष्य, वो गेट के ऊपर खड़ा रहता है पूरा रात भर, वो जप करते देखता रहता है पहरा सिक्योरिटी बनकर कि कौन। बराबर सुबह 2:30 बजे माता शबरी अंदर घुसती है और पूरा अपना शरीर को ढक के अंदर चोर के जैसा घुस रही थी, और वो जो शिष्य उसको हाथ पकड़ लेता है, कौन हो तुम चोर, क्यों अंदर जा रहा हो, ऐसा उसको वो एकदम घबरा जाती है। तो वो बोलती है कृपा क्षमा करिए, मैं चोर नहीं हूं, मैं आपका सेवा करने के लिए इधर रोज आती हूं। बोले तुमको कौन बताया इधर सेवा करने के लिए, आपको पता नहीं ये ऋषि का आश्रम है, इधर स्त्रियों को आने के लिए मना है, ब्रह्मचारी का आश्रम है, ऐसा डांटता है। तो बहुत दुखी होती है, नहीं नहीं मैं इसलिए आप उठने से पहले मैं आती हूं, मैं आप सबको देखी भी नहीं, मैं केवल सेवा करके जाती हूं और ये मेरा जीवन का एक सहारा है, कृपया मुझे इससे वंचित मत करो। तो बहुत कृपा याचना करती है, आप चलो मेरे गुरु के पास बोल के उसको गुरु के पास लेके जाते हैं मातंग ऋषि के यहां। और मातंग ऋषि उस शबरी को देखते हैं, बेचारा है, उसके आंखों में बहुत घबराहट है और आंसू आ रहा है। मातंग ऋषि को बोलती है मुझे क्षमा करिए, आपका सेवा के लिए मैं आती हूं और मुझे अन्यथा कोई आपसे इच्छा नहीं है, केवल भागवत का सेवा करने का मुझे इच्छा थी। तो मातंग ऋषि 2 मिनट के लिए, उसका मन में, उनके मन में आता है कितना भाग्यवान है, तो प्रेम से बोलती देखो बेटी आपने बहुत अच्छा सेवा किया है और आपको जो कृपा मिलना था हमारे इस जप और तप से तुमको पूरा कृपा मिली है, अब कल से आप सेवा यहां आने का जरूरत नहीं है, इतना 2 बजे उठकर सुबह उठकर इतना कष्ट मत ले लो, आप अपने कुटिया में रहो और सेवा करो, ऐसा मातंग ऋषि बोलते हैं। और शबरी को इतना दुख होता है, बेचारी रोने लगती है और उसका रोना देखकर मातंग ऋषि को ऐसा लगता है कि इसका मन में दुख है इस बात की। तो ये सोचकर मातंग ऋषि बोलते हैं ठीक है बेटी, आप ऐसा काम करो यही सेवा करते रहो, कल से तुम इधर आओ सेवा करो, इधर रहो और पानी भर के रखो, साफ सफाई करो, फूल रखो और राम नाम का जप करो, ऐसा करने से एक न एक दिन स्वयं भगवान राम आके तुमको यहां दर्शन दे देंगे। सब मातंग ऋषि उसको आशीर्वाद दिया, तो वो इतना खुशी हो गए और अगले दिन बहुत हर्षित होकर सुबह उठकर जैसे कि रोज आती थी वैसा आती है, तो देखती है तो मातंग ऋषि सब शिष्य वहां छोड़कर गए थे, आश्रम में कोई नहीं था। वो देखती है हाय ये सब कहां गए। तो मातंग ऋषि सोचे कि ये इसको कृपा करने के लिए उन्होंने पूरा आश्रम छोड़ के गए और वो बहुत दुखी हुई कि मेरे वजह से इनको ये आश्रम छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी मेरा गुरु का वचन है कि यहां रहो सेवा करो और राम नाम जप करो और एक दिन भगवान आएंगे, ऐसा सोचकर उसी आश्रम में वो रहती है। और आप जानते हैं रामायण में भगवान ने एक महान भागवत का वचन पूरा करने के लिए उसी स्थान पर आते हैं और शबरी माता का जूटा बेर खाते हैं उधर, और उसी बेर को भगवान राम ने जो बीज जो होता है उसको उधर फेंके थे, उसके बेर का पेड़ अभी भी वहां बेर का पेड़ है। तो हम कुछ साल पहले वहां गए थे, रामदुर्ग में एक प्लेस है, तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस स्थान को धाम बना रहे, एक शबरी माता का मंदिर है, भगवान राम और लक्ष्मण का खड़े हुआ मूर्ति है जो वहां जा रहे थे, और एक बेर का पेड़ है, और बहुत बड़ा एक उधर छोट एक माउंटेन है, वहां एक पानी का झरिया आते हैं, बहुत शुद्ध पानी है, और एक कुंड है, तो बहुत ही सुंदर प्लेस है। कभी आपको मौका मिला तो इस स्थान को जा सकते हैं। और उसके बाद में मातंग ऋषि जाते हैं पंपा सरोवर, पंपा सरोवर में भी उनका आश्रम है, बाद में वहां गए जहां हनुमान जी का जन्म हुआ है, तो उसी स्थान पर। तो इस कथा से कैसे भागवत का कृपा के वजह से व्यक्ति को अपने हृदय में शुभ कर्म का आशा का प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए उतह जो ये सब्जेक्ट है, इस विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास करके ये जो श्लोका है, तीन महाजनों ने इसी स्टोरी को बता रहे हैं, और अपने सभी का जीवन में दुख को शमन करने वाला, शोक को नाश करने वाला ये श्लोका है। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। टाइम हो गया है प्रश्न के लिए।